रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य सेहत। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूं। दुख भोग और पुनरुत्थान की प्रथम भविष्यवाणी। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेत्रुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा न करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो।
साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।
स्वर्ग का वर्णन करता हूँ मैं, स्वर्ग कभी ना देखा हूँ मैं। स्वर्ग से आया मेरा मसीहा, उसकी बातें करता हूँ मैं।
स्वर्ग का वर्णन करता हूँ मैं, स्वर्ग कभी ना देखा हूँ मैं।
ने कहा प्यार से मैं हूँ स्वर्ग का द्वार।
उसने कहा प्यार से मैं हूँ स्वर्ग का द्वार।
मार्ग सत्य और जीवन हूँ मैं, मेरे पास आओ।
स्वर्ग का वर्णन करता हूँ मैं, स्वर्ग का वीणा देता हूँ मैं।
स्वर्ग से आया मेरा मसीहा, उसकी बातें करता हूँ मैं।
स्वर्ग का वर्णन करता हूँ मैं, स्वर्ग कभी ना देखा हूँ।
कहा प्यार से मैं हूँ पिता का प्यार।
उसने कहा प्यार से मैं हूँ पिता का प्यार।
क्रूस उठा के चल संग मेरे, स्वर्ग द्वार हूँ मैं।
स्वर्ग का वर्णन
स्वर्ग से आया मेरा मसीहा, उसकी बातें करता हूँ मैं।
स्वर्ग का वर्णन करता हूँ मैं, स्वर्ग कभी ना देखा हूँ।
अभी आपने सुना यह मधुर गीत जिसके बोल थे स्वर्ग का वर्णन करता हूँ मैं। साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों, इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का। तो साथियों, आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य। साथियों, इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य। कार्यक्रम का विषय है अवसाद, कारण और निदान।
साथियों, हम में से सभी को कभी न कभी किसी न किसी प्रकार का दुख होता है या फिर हम उदास हो जाते हैं। लेकिन अक्सर आप सभी ने यह देखा होगा कि दुखी होने या उदासी का ये एहसास क्षणिक होता है या फिर 2-3-4 दिनों के लिए चलता है और आराम से बड़े अच्छे तरीके से हम इस एहसास से बाहर आ जाते हैं। कब आ जाते हैं हमें ही मालूम नहीं पड़ता और अचानक जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। लेकिन साथियों, जब कोई व्यक्ति अवसाद संबंधी विकार से पीड़ित होता है तब ये चीज रोजाना के जीवन में आ जाती है। उदास रहना, हमेशा दुखी रहना, ये उस व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। दरअसल ऐसा होने से उस व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन पर, उसके सामान्य कामकाज पर असर पड़ता है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है और ऐसा होते हुए वो व्यक्ति और उसके परिवारजन सभी दुखी होने लगते हैं। साथियों, अवसाद एक बड़ा ही सामान्य सा रोग है, लेकिन जितना सामान्य यह है उतनी ही गंभीरता भी इसमें है और इससे पीड़ित लोगों को सही समय पर सही इलाज की जरूरत होती है। और देखा यह गया है कि जिन भी व्यक्तियों को अवसाद होता है वे इस चीज को मानते ही नहीं कि वे अवसाद के शिकार हैं। दरअसल ऐसे व्यक्ति जो तनाव से पीड़ित होते हैं, अवसाद से बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं और उस अवसाद और तनाव के कारण उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है, उनके दैनंदिन जीवन में इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है, ऐसे व्यक्ति अक्सर अपना इलाज नहीं कराते। अवसाद के लक्षणों को किसी न किसी कारण से जोड़कर वे इस चीज को नजरअंदाज करते जाते हैं, जबकि अधिकतर मामलों में अवसाद से गंभीर रूप से पीड़ित मरीज भी इलाज से बेहतर हो सकते हैं। दरअसल अवसाद और उसके कारण और उसका निदान, इन सभी चीजों को लेकर हमारे समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियां फैली हुई है जिन्हें लेकर हम सभी अवसाद के कारणों को जानने और उसके संबंध में इलाज करने को लेकर कतराते हैं। ऐसे में इस रोग को लेकर दरअसल हुए तो बहुत सारे शोध हैं, लेकिन उन शोधों का परिणाम या फिर उन शोधों के परिणामों से सामने आए हुए उपाय या फिर इलाज वे बेकार हो जाते हैं। साथियों, अवसाद के लिए हुए गहन शोधों में इस रोग से ग्रसित लोगों के इलाज के लिए अनेक औषधियां सामने लाई गई हैं। बहुत सारी साइकोथेरेपी यानी मानसिक चिकित्साएं और इलाज के अनेकानेक तरीके इजाद हुए हैं। लेकिन सबसे पहली समस्या, जो भी व्यक्ति अवसाद से पीड़ित है वो इस चीज को स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि उसके साथ किसी प्रकार की समस्या है। दरअसल अवसाद रोग का कोई एक कारण नहीं होता, लेकिन अवसाद के कारणों को हम आनुवंशिकता, बायोकेमिकल, वातावरण और मनोवैज्ञानिक संबंधी मिश्रित घटकों का समावेश कह सकते हैं। अनेक शोधों के अनुसार अवसाद से संबंधित बीमारियां मस्तिष्क के विकार कहलाती हैं। एमआरआई जैसी मस्तिष्क को जांचने की तकनीक ये बताती है कि अवसाद और तनाव से पीड़ित लोगों के दिमाग उन लोगों से अलग होते हैं जो इस बीमारी से पीड़ित नहीं होते हैं। दरअसल मस्तिष्क का वो हिस्सा जो हमारी मनोदशा, विचार, निद्रा, भूख और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है, वो अवसाद से पीड़ित व्यक्तियों में कुछ असामान्य तरीके से काम करता हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा मस्तिष्क की कोशिकाएं जिन आवश्यक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल का उपयोग संवाद के लिए करती हैं, वे भी अवसाद से पीड़ित लोगों में असंतुलित प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के शोधों में भी एक चीज सामने नहीं आ पाती है कि आखिर अवसाद उत्पन्न क्यों होता है। साथियों, अवसाद के कुछ प्रकारों में आनुवंशिकता पाई जाती है, यानी पूरे परिवार में ही इस प्रकार का स्वभाव पाया जाता है और इसी के चलते इस रोग को आनुवंशिकता से जोड़ना संभव होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अवसाद केवल आनुवंशिक होता है। अवसाद के शिकार वे लोग भी हो सकते हैं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य अवसाद से पीड़ित नहीं है। आनुवंशिकता पर हुए शोध इस बात का इशारा जरूर करते हैं कि आनुवंशिकता अन्य घटकों के साथ जुड़कर अवसाद होने के खतरे को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी प्रकार का मानसिक आघात लगना, किसी प्रकार का कटु अनुभव होना, कोई सदमा लगना, किसी करीबी और प्रिय रिश्तेदार की मृत्यु हो जाना, या फिर किसी तनावदायक संबंध में जीना, या फिर किसी भी तनावदायक स्थिति में लंबे समय तक रहना अवसाद का कारण बन सकते हैं। साथियों, ऐसी स्थिति में एक बार अवसाद का इलाज हो जाने के बाद भी यदि उसी प्रकार की स्थिति आगे आकर फिर से बनती है, तब अवसाद के दौरे पड़ सकते हैं। यदि आप अवसाद से पीड़ित हैं, तो आपको थकान, लाचारी और नाउम्मीदी का एहसास हो सकता है। इन हालातों में आपको खुद की मदद करना, सही तरीके से जीवन जीना, सामान्य तरीके से किसी संबंध को निभाना, इतने सरल काम भी बहुत मुश्किल लग सकते हैं। लेकिन ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये सारी मनोदशाएं अवसाद का हिस्सा है और ये सही स्थिति को सही तरीके से दर्शाते नहीं हैं। साथियों, जैसे जैसे आप अपने अवसाद को, अपने अवसाद से जुड़ी स्थिति को और अवसाद के कारणों को पहचानने लग जाएंगे और अपने उपचार की शुरुआत कर देंगे, तब वाकई आपके नकारात्मक विचार गायब होते चले जाएंगे। तो चलिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप लंबे समय तक अवसाद में रहते हैं, तब किस प्रकार की चीजें आपकी मदद कर सकती हैं? सबसे पहले आपको अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। हल्के फुल्के कामों में, व्यायाम में अपने आप को व्यस्त रखें। कुछ ऐसा काम करें जिसमें आपको आनंद मिले, जैसे फिल्म देखना, कोई खेल खेलना, सामाजिक या धार्मिक या अन्य कार्यक्रम जिसमें आपकी रुचि हो उसमें हिस्सा लें। अपने लिए यदि आप लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं, तो अपनी क्षमता के अनुसार ही लक्ष्य निर्धारित करें। ये देखा जाता है कि दूसरे लोगों की देखा देखी हम अपनी क्षमता से बाहर और परिस्थिति से परे के लक्ष्य स्वयं के सामने रखते हैं, उन्हें हासिल नहीं कर पाते हैं और नतीजा होता है अवसाद। इसलिए शुरुआत ही ऐसी करें कि हम अपने लिए लक्ष्यों को यथार्थवादी रखें। यदि आपके सामने कुछ बहुत बड़े बड़े कामों का लक्ष्य है, तो बेहतर ये होगा कि उन कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। इनमें से कुछ कामों की प्राथमिकताएं निर्धारित करें और ऐसा काम करें जिसे संपन्न करने की पूरी क्षमता आप में हो। अन्य लोगों के साथ समय बिताना या फिर किसी एक मित्र या रिश्तेदार से अपनी मनोदशा का पूरा पूरा बखान कर देना जिस पर आपको विश्वास हो, ये भी आपको बहुत मदद कर सकता है। स्वयं को कभी भी सबसे अलग थलग करने की कोशिश ना करें। एक या दो बार स्वयं को अलग थलग करने से आपको वो पहचान या वो महत्व मिल जाएगा, लेकिन बार बार ऐसा करने से आप सबकी नजरों से गिर जाएंगे। आपको हमेशा ये सोचना है कि यदि आप अवसाद में हैं, चाहे कितने भी गहरे अवसाद में हैं, आप इससे ऊपर जरूर आने वाले हैं। बहुत जल्दी सुधार कभी भी संभव नहीं होता। अपने आप को अवसाद से अचानक बाहर आ जाने की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करें। दरअसल जब भी अवसाद का इलाज होता है, तब सबसे पहले मरीज की नींद और उसकी भोजन करने की इच्छा, इन दोनों चीजों में सुधार के संकेत हमें मिलने लगते हैं। यदि आप अवसाद से पीड़ित हैं, तब जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को लेना टालें, जैसे विवाह करना या फिर तलाक लेना या नौकरी बदलना। अपने निर्णयों को उन शुभचिंतकों के साथ बांटें जो आपको भली भांति जानते हों और जो आपका भला चाहते हों। साथियों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि इलाज के दौरान जैसे जैसे आपकी स्थिति में सुधार होने लगेगा, वैसे वैसे आपके मन में नकारात्मक विचारों के स्थान पर सकारात्मक विचार आने लगेंगे। तो अब जब हमने ये जान लिया कि किस प्रकार से हम स्वयं की मानसिक रूप से मदद कर सकते हैं, कुछ उपाय आपको ऐसे भी बताएं जिन्हें आप यदि भोजन में सेवन करते हैं तब भी अवसाद से बचे रह सकते हैं। सेब खाने से भी डिप्रेशन दूर होता है, क्योंकि सेब में विटामिन बी, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं, जिनसे ग्लूटामिक एसिड का निर्माण होता है। इसके अलावा एक बहुत स्वादिष्ट तरीका है अवसाद से बाहर आने का, और वो है काजू। जी हाँ, विटामिन बी की मात्रा ज्यादा होने के कारण काजू हमारे स्वाद और तंत्रिका तंत्र को ठीक रखता है और अवसाद से भी हमें दूर रखता है। इसके अलावा डिप्रेशन से उपचार के लिए इलायची को पानी इसके साथ उबालकर या चाय में मिलाकर पीना भी अवसाद से हमें दूर रखता है। नींबू का उपयोग जितना ज्यादा किया जाए वो उतना ही आपके भोजन को एक नया स्वाद देता है, इसके साथ ही आपके शरीर को नई ताजगी देता है। नींबू की सुगंध अक्सर आपकी नींद को दूर करती है और यही वो सुगंध होती है जिसके चलते आप अपने आप को अवसाद से भी दूर रख सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि अवसाद, उसके कारण और निदान पर आधारित था। और अब समय है हमारे आज के प्रश्न का। तो साथियों, आज के हमारे कार्यक्रम में हम आपसे जो प्रश्न पूछने जा रहे हैं वो ऐसा है कि काजू का कौन सा गुण है जो हमारे स्वाद और तंत्रिका तंत्र को ठीक रखता है। प्रश्न एक बार और सुने, काजू का कौन सा गुण है जो हमारे स्वाद और तंत्रिका तंत्र को ठीक।
साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत जिसके बोल है गाँव प्रभु तेरा नाम।
गाऊं प्रभु तेरा गाऊं, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा गाऊं, भजूं प्रभु तेरा नाम। प्रभु की बढ़ाई होवे सदा, गूंजित होवे सारे जहां। गाऊं प्रभु तेरा गाऊं, भजूं प्रभु तेरा नाम। जब तक जिंदा रहूंगा मैं नहीं भूलूंगा ये सुख मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं नहीं भूलूंगा ये सुख मैं पल पल नाम में गाऊं सदा गुल का गुल में गाऊं सदा जय हो जय हो जय हो प्रभु की बड़ाई हो वे सदा गाऊं प्रभु तेरा गाऊं भजू प्रभु तेरा नाम प्रभु की बड़ाई होवे सदा गूंजित होवे सारे जहां गाऊं प्रभु तेरा गाऊं भजू प्रभु तेरा नाम।
साथियों अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत जिसके बोल थे गाऊं प्रभु तेरा नाम। दोस्तों इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है rva hindi। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है rva hindi। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @rva hindi। साथियों हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है rva hindi। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें विभिन्न लेख रचनाएं कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई सवाल सुझाव लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satishwar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आरवी ऑफिस 10 सत प्रकाशन संचार केंद्र खंडवा रोड भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास इंदौर मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो आरवीए मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए आरवीए हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का आप सभी का हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।
सुन ले मसीह की पुकार कदम से कदम मिलाए जमा उठा तो आरती कर्म सीखी।